ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ आज की वैयावृत्तिकरण भावना की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज की नवी भावना वैयावृत्तिकरण भावना वैयावृत्ति करे और उस वैयावृत्ति के माध्यम से अपने आत्म परिणामों को पवित्र बनाए विशुद्ध बनाए यह वैयावृत्तिकरण भावना है। विशुद्धि अनेक कारणों से बढ़ सकती है। विशुद्धि बढ़ने के कारण बहुत सारे होते हैं, इसलिए विशुद्धि भी किसी एक पर डिपेंड नहीं है। वैयावृत्ति भी विशुद्धि का कारण बन सकता है। किसी को साधुओं की समाधि को देखकर विशुद्धि बढ़ती है तो किसी को साधुओं की समाधि में भाग लेकर उनकी वैयावृत्ति करने में विशुद्धि बढ़ती है। देखने से भी विशुद्धि बढ़ती है और वैयावृत्ति करने से भी विशुद्धि बढ़ती है। देखने से अनुभव नहीं आता, करने से अनुभव आता है। क्या करने से? वैयावृत्ति करने से अनुभव आता है, इसलिए केवल देखना ही पर्याप्त नहीं, करना भी पर्याप्त, करना भी आवश्यक है। वैयावृत्ति करना भी आवश्यक है। करने से क्या होगा? करने से ये होगा कि अंत समय में हम कैसे मरण करें, हमारी आत्मा की वैयावृत्ति हम कैसे करें, मरण के काल में स्वयं की भी वैयावृत्ति करनी पड़ेगी। आत्मा है, आत्मा के भीतर ज्ञान भी है। वह ज्ञान अनुभूत ज्ञान नहीं है तो हम अपनी वैयावृत्ति नहीं कर सकते। आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए और आत्मा के भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान के संबंध में विशिष्ट जानकारी होना चाहिए और उस ज्ञान के प्रवाह को किस तरह से किधर मोड़ने पर क्या परिणाम निकलता है ये अनुभव में आना चाहिए और वह अनुभव करने से आता है। देखने से नहीं आता। मुनियों को हम आहार दान देते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहें और अनुमोदना करते रहें, विशुद्धि अवश्य बढ़ती है, किंतु अनुभव का ज्ञान नहीं मिलेगा। मिलेगा अनुभव कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? आहार तैयार करने से, तैयार करते समय किस प्रकार तैयार करना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक अपन कितनी सावधानी बरतते हैं, बहुत सावधान रहते हैं, कितनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं, कितने हम जागृत रहते हैं, प्रति समय यह आहार हम गुरु के लिए दे रहे हैं, यह गुरु के संयम के रक्षण में कारण बनेगा और यह कारण बन जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सफलता की अपेक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम आहार दान देंगे। देखेंगे तो सफलता नहीं मिलती, देंगे तो सफलता मिलती। तो आहार देना भी विशुद्धि का कारण है, यह प्रैक्टिकल रूप है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में केवल अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? उसको डॉक्टर बनना है, वह अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करते समय ही वह सोच रहा है कि शरीर में से किस पार्ट को कैंची से काटने पर कितना दर्द होता है, ये अभी अध्ययन में है। कहां के किस पार्ट को कितना चीरने पर रोगी को कितनी वेदना हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती, ये अभी अध्ययन कर रहा है, पुस्तक में पढ़ रहा है। ज्ञान तो होता है लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिलता। प्रैक्टिकल के लिए तो महीनों में एक बार, एक महीने तक जो अध्ययन किया है, एक महीने के बाद प्रैक्टिकल लिया जाता है। आपने कितना अध्ययन किया और आप यहां पर प्रैक्टिकल रूप से कितना काम कर पाएंगे, ये सिखाया जाता है, ये परीक्षा होती है। थ्योरेटिकल में पास होना आसान बात है लेकिन प्रैक्टिकल में पास होना, नंबर लेना, रैंक लेना बहुत कठिन बात है। और प्रैक्टिकल में जो बहुत अच्छा नंबर लेते हैं वे एक आदर्श उत्कृष्ट डॉक्टर बन जाते हैं। और उस डॉक्टर के पास कोई मरीज पहुंचता है तो अनुभव तक नहीं करता कि मेरा ऑपरेशन कैसा हो गया और मैं कैसे ठीक हो गया। बिना दर्द के ही ऑपरेशन करके मरीज को ठीक कर देता है वह डॉक्टर। आज के डॉक्टरों को इंजेक्शन भी किधर लगाना चाहिए किस जगह, ये भी मालूम नहीं रहता, कहीं भी लगा देते हैं और मरीज चार दिन तक पीड़ित रहता है, दर्द रहता है। कहां पर इंजेक्शन देना चाहिए मालूम ही नहीं। तो थ्योरेटिकल भी कमजोर है और प्रैक्टिकल भी कमजोर है। डॉक्टरेट विषय को पढ़ा तो है लेकिन हमने थ्योरेटिकल को भी ठीक से नहीं किया है और प्रैक्टिकल को भी ठीक से नहीं किया है। उसका परिणाम क्या निकला? रोगियों के लिए पीड़ादायक बन गया वह डॉक्टर। साधु वैयावृत्ति में हमें थ्योरेटिकल भी चाहिए और प्रैक्टिकल भी चाहिए। थ्योरेटिकल यानी देखना, मालूम नहीं है तो तीन चार दिन देख लो, चार दिन पांच दिन देख लो, जाकर के शामिल हो जाओ, आहार देना है, चौका लगाना है, परिशुद्ध आहार गुरु को कराना है, तो थ्योरेटिकल से ही शुरू होता है, एकाएक ही प्रैक्टिकल नहीं आता किसी को। पहला थ्योरेटिकल किया जाता है, फिर प्रैक्टिकल पर जब आप जाते हैं तो अनुभव मिलता है। अनुभव मिलने के बाद आप इतने सहज हो जाते हैं कि आपको पूरा चौके का सामग्री तैयार करने के लिए एक डेढ़ घंटा पर्याप्त है। और पहले दिन थ्योरेटिकल से जब प्रथम बार प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको तीन तीन घंटे लगते हैं चौका लगाने के लिए। वैयावृत्ति करना है तो डर लगता है। क्या डर लगता है? कुछ न हो जाए, ये डर लगता है। और कुछ न हो जाए, इस डर के माध्यम से, डर के टाइम में अगर आप भोजन निर्माण करते हैं ना, तो कई दोष उसमें हो ही जाते हैं। डर से, भय से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं। और भय नहीं रहेगा तो दोष नहीं होंगे, लेकिन भय से मुक्त होने के लिए एक न एक बार थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में उतरना तो पड़ेगा ना। क्या डरते रहेंगे तो काम चलेगा? कई लोग आहार देते हैं, आहार देते समय उनके हाथ कपते, बनाते समय हाथ नहीं कपते, खाते समय हाथ नहीं कपते, देते समय हाथ कपते। देते समय हाथ कपते और खाते समय हाथ क्यों नहीं कपते? वो प्रैक्टिस है अनादिकाल से। स्वयं खाने का तो प्रैक्टिस है, उसमें हाथ कपते नहीं है, लेकिन देना तो पहली बार हो रहा है इसलिए हाथ यूं यूं होता है। देने वाला डरने से पात्र भी डर जाता है। नहीं, इसलिए डर जाता है, देने वाला ऐसा ऐसा कर रहा है, वो नीचे पटकेगा कि अंदर पटकेगा, ये समझ, ये डर लगता है। हाथ में डालेगा कि नीचे डालेगा, भरोसा नहीं लगता, इसलिए डर लगता है। और नीचे गिराना दोष है, दोषों से साधु को डर लगता है। दोष नहीं होना चाहिए। देते समय आहार को नीचे गिराते हुए नहीं दिया जाता। और साधु के लिए भी मूलाचार में कहा है कि लेते समय आहार को नीचे गिराते हुए नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल पैक रहना चाहिए। अंजुली नीचे नहीं गिरना चाहिए, अंजुली को ऐसे कर देंगे तो नीचे गिरेगा, बहुत सारा नीचे गिर जाता है, तो उसमें दोष आता है। किस मूल गुण में दोष आता है मालूम है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईर्ष्या समिति तीसरे नंबर में है। ईर्ष्या समिति में दोष आता है, गिराना दोष है, और देते समय गिराते हुए देना भी दोष है। ये दोष हमारे लिए क्यों आया? इसलिए आया कि हम डर रहे थे। भय अनेकों दोषों के उत्पत्ति का कारण है। भय नहीं रहना चाहिए। साधु वैयावृत्ति करते समय कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, डर नहीं लगता, डर भाग जाता है। एक दिन डर लगता है, दो दिन डर लगता है, तीसरे दिन डर समाप्त हो जाता है, तीसरे दिन हाथ कपेंगे नहीं। श्री कृष्ण एक जंगल में विराजमान मुनि महाराज को देखे। नेमिनाथ भगवान के समोष चरण में उपदेश सुनने हेतु जा रहे थे। रास्ते में मुनि महाराज देखे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान में लीन थे। लेकिन मुनि को देख करके कृष्ण के मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई। उस मुनि महाराज का शरीर बहुत क्षीण हो चुका था और हड्डी हड्डी दिख रही थी। कृष्ण के मन में विचार आया, देख करके साधु परमिष्टि तपस्या में लीन है, मैं अरहंत परमिष्टि का उपदेश सुनने जा रहा हूं और तपस्वियों की सेवा करना भी तो उपदेश का ये प्रैक्टिकल परिणाम है, फल है। मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उपदेश सुनने की बात को उन्होंने स्थगित कर दिया और मुनि महाराज के निकट जाकर के अवलोकन किया अच्छी तरह से और देखा मुनि महाराज को अवश्य कोई न कोई व्याधि होना चाहिए, अन्यथा काया इतनी कृश क्यों? विचार आया, एक वैद्य को लाकर के दिखाना पड़ेगा और दिखा करके ही आगे का इलाज हो सकता है, नहीं तो कुछ इलाज करना संभव नहीं। समोशरण जाना भी स्थगित कर दिया, सीधा वे नगर में चले गए और एक वैद्यराज को साथ में लेकर के उस स्थान पर पहुंच गए। कहां पर? जंगल में जहां मुनि महाराज बैठे थे, वैद्य के साथ चले गए और वैद्य जी से कहा कि देखो, ये मुनि महाराज कृष काया वाले, इनकी व्याधि का पता लगाना है कि कौन सी व्याधि है, कौन सा रोग है। तो वैद्य जी ने स्वीकृति दी, मैं चेक कर लूंगा और यह अवश्य कोई न कोई रोग है, मुझे रोग का अंदाजा लग चुका है और चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। निकट चले गए, महाराज के दाएं हाथ को पकड़ लिया और नाड़ी की परीक्षा की। वैद्य लोग इतने होशियार होते हैं कि नाड़ी पर हाथ रखते ही, अंगुली रखते ही भीतर कौन सा रोग होता है उनको अनुमान हो जाता है और वह अनुमान बिल्कुल ठीक निकलता है। वैद्य को बुला करके दिखाया, वैद्य ने नाड़ी पर अंगुली रख करके रोग का अनुमान लगाया, वह रोग था क्षय रोग। कैसा रोग? क्षय रोग था और उस क्षय रोग को दूर करने के लिए उनके पास एक अमोघ औषधि थी, उसको उन्होंने सोचा कि इसको एक हफ्ते तक यदि लाड़ू के साथ मिक्स करके दे देता हूं तो ये मुनि महाराज 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। वैयावृत्ति के भाव जगे, किसके? वैद्य जी के। औषधि देने के भाव जगे, वैयावृत्ति करने के भाव जगे, श्री कृष्ण के भी भाव जगे, दोनों के भाव जग गए, दोनों की विशुद्धि बढ़ रही है। श्री कृष्ण के भी मन की विशुद्धि है और वैद्य जी की भी मन की विशुद्धि है। वैद्य जी को इसलिए खुशी हो रही है कि मेरे पास जो दवाई है वो कहीं नहीं है और इसके माध्यम से मैं मुनि महाराज को रोग से मुक्त कर दूंगा ना, तो महाराज खुश हो जाएंगे और राजा भी खुश हो जाएगा, राजा से शाबाश मिलेगा, मुनि महाराज से कुछ सुनने के लिए एक दो वचन मिलेंगे, शुभ वचन सुनेंगे हम उनके मुखारविंद से ठीक करने के बाद। अभी नहीं, अभी तो इलाज करूंगा। वे श्री कृष्ण के हाथ में वह औषधि दे दी और कृष्ण ने 7 दिन तक लगातार उस मुनि महाराज के आहार के टाइम में उस औषधि को लाड़ू में मिक्स करके दे दिया। देते समय इतनी विशुद्धि बढ़ जाती थी कृष्ण जी के, इतनी विशुद्धि बढ़ जाती थी, इतनी विशुद्धि बढ़ जाती थी कि उस विशुद्धि में अपने आप को भूल जाते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी साधु की वैयावृत्ति करते समय जो आत्मा के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है श्रावक की, शास्त्रों में चर्चा है कि श्रावक सामयिक के काल में भी वह विशुद्धि ला नहीं सकता। आचार्य श्री भी कहते हैं श्रावक को हम देखते हैं, श्रावक की प्रसन्नता आहार देते समय कैसा रहता है, सामयिक के टाइम में वैसा नहीं बन सकता है। वो शायद उन्होंने देखा हो किसी श्रावक को सामयिक करते समय और बैठने के बाद प्रसन्न होकर के बैठा तो है, लेकिन 4-10 मिनट के बाद ही ये शुरू हो जाती है, नींद आने लगती है सामयिक में आप बैठ जाएंगे तो। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या मुनि महाराज को आहार देते समय ऊंग आ रही हो? और ऐसा कभी हुआ है क्या सामयिक में तो 10 मिनट तक विशुद्धि रही इसके बाद तो नींद आने लगी, लेकिन आहार देते समय, देने से पूर्व जब आहार की तैयारी चलने लगी वहां से लेकर के देने के काल में पूर्ण होने तक और होने के बाद भी और मुनि महाराज को पहुंचा करके उनके स्थान पर पहुंचा करके आने तक आपके परिणामों में लगातार विशुद्धि बनी रहती है, बनी रहती कि नहीं, अनुभव करते हैं ना। तो श्रावक का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आहार दान है। आहार दान से बढ़कर के आपके जीवन में कोई धर्म हो ही नहीं सकता। विशुद्धि की अपेक्षा से तो यह सबसे बड़ा धर्म है ही, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वह धर्म बड़ा इसलिए है जो बड़े धर्म वाले हैं धर्म की रक्षा के लिए, जो बड़े धर्म वाले हैं बड़े धर्म वालों की रक्षा के लिए ये अन्न कारण बनता है, इसलिए भी आहार दान सबसे बड़ा है। एक आहार दान के कारण से ही श्रावक श्रेष्ठ माना गया है। श्रावक को तीर्थ का प्रवर्तक कहा है उपचार से, उपचार से श्रावक तीर्थ का प्रवर्तक है और साक्षात तीर्थ का प्रवर्तक मुनि महाराज। तीर्थ यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय तीर्थ कहलाता है। इस तीर्थ को जीवित रखने वाले कौन? साधु। प्रैक्टिकल रूप से उस रत्नत्रय को जीवन में धारण करके उसको बचाने का कार्य, उसके माध्यम से आत्मा को मुक्त करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कौन करते हैं? साधु करते हैं। साधु तीर्थ को जीवित करते हैं, तीर्थ को जन्म देते हैं, लेकिन जन्म दिए हुए उस तीर्थ की रक्षा करने वाले कौन? हाँ, श्रावक। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले चुका है ये। ये जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी? वैयावृत्तिकरण भावना की जिम्मेदारी। ये वैयावृत्तिकरण भावना जितने उत्कृष्ट श्रावक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मुनि महाराज भी मुनि महाराजों की वैयावृत्ति कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वह 10% है। 10 ही%, 90% वैयावृत्ति श्रावक के तरफ से होती है। उस मुनि महाराज ने जब से दीक्षा ली है तब से लेकर अब तक समाधि मरण के काल तक उनके रत्नत्रय को सुरक्षित रखने का कार्य किसके द्वारा हुआ है? श्रावक के द्वारा हुआ। और श्रावक अगर रक्षा नहीं करता तो मुनि महाराज भी वैयावृत्ति करने वाले थे, अंत समय में 48 मुनि महाराज मिल करके वैयावृत्ति करते हैं। आप वैयावृत्ति करके मुनियों को सौंप देते हैं, मुनि को। मुनि महाराज अंतिम डॉक्टर हैं और श्रावक डॉक्टर तो नहीं है, कंपाउंडर। श्रावक कंपाउंडर है, ये कंपाउंडर सभी सामग्री ला करके दे देता है, मरीज को भी सौंप देता है। और सौंपता है किस प्रकार से? अपनी आद्य भूमिका, जो आद्य कर्तव्य होते हैं, उनको अच्छी तरह से करके एक मरीज को मरीज की तरह सौंप देता है डॉक्टर के हाथ में। और जहां पर भूमिका समाप्त होती है, आगे का कार्य समाप्त होता है ऑपरेशन का, वहां पर वो डॉक्टर के हाथ में दे देता है, औषधि ला करके दे देता है, मरीज को लिटा भी देता है। यहां तक तो उसका कार्य ठीक है, लेकिन ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। मुनि महाराज, मुनि महाराज के लिए डॉक्टर होते हैं। एक मुनि महाराज जो संलेखना ले लेते हैं ना, वे मरीज हैं। वे निर्यापक आचार्य के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते हैं और मुझे भव व्याधि से मुक्त करो, मुझे मोहिनी कर्म से मुक्त करो, मुझे निर्मल बना करके समाधि मरण कराओ, अंत समय में जब प्राण छोड़ूंगा मेरे पास क्रोध मान माया लोभ ये परिणाम बिल्कुल न रहे, मैं ज्ञाता दृष्टा बनकर अपने में स्थापित रहूं। ये निवेदन करने पर निर्यापक आचार्य उनको स्वीकार करते हैं, उस मरीज को स्वीकार करते हैं। लेने वाले की जिम्मेदारी, समाधि मरण स्वयं करने की जिम्मेदारी स्वयं की होती है, लेकिन निर्यापक आचार्य के सामने जाकर के समर्पित होने की जरूरत क्या है? इसलिए कि मैं छद्मस्थ हूं, मैं किस समय कर्मों के उदय के वश से किस तरह के परिणामों को प्राप्त करूंगा कोई भरोसा नहीं। मेरा प्रयत्न, मेरा पुरुषार्थ मेरे अधीन है, लेकिन कर्मों के हाथ में भी तो है ये आत्मा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ऐसा एकांत नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो सबके समाधि मरण एक से होती, मृत्यु समाधि मरण एक सा ही होता, लेकिन ऐसा होता है क्या? सबका मरण एक सा होता है क्या? कोई ऐसा मर रहा है, कोई वैसा मर रहा है, कोई ऐसा मर रहा है, जिसको अच्छी तरह से हम मरण कराना चाहते थे उनका मरण नहीं हो पाया, इसमें कौन कारण है? कर्म का उदय कारण कहे कि आत्मा की उपादान शक्ति कम पड़ गई कहे कि क्या कहें? कर्मों का उदय है, कर्मों के उदय आने पर आत्मा अपने उपादान शक्ति से कुछ भी पुरुषार्थ करे, उसमें पुरुषार्थ करने पर भी फेल हो जाता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं कर सकता, ये कहेंगे ना तो सबकी समाधि, सबका समाधि मरण तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ऐसा लोक व्यवहार में दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। इससे पता चलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बहुत कुछ कर सकता है, करने के लिए बहुत कुछ निमित्त बन सकता है, ये सिद्ध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, इसको कहो कोई बात नहीं, पर एकांत से नहीं। सिद्ध परमेष्टि को अन्य द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है, ये सम्यक एकांत है। एकांत है ही, लेकिन ये सम्यक एकांत है। अरहंत परमेष्टि को उपसर्ग करने वाला आ भी गया, आ तो नहीं सकता, लेकिन अरहंत परमेष्टि के ऊपर कोई उपसर्ग करने वाला आकर के उपसर्ग करने लग जाए, अरहंत परमेष्टि पर उपसर्ग हो ही नहीं सकता। अन्य द्रव्य अरहंत द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ये सम्यक एकांत है। किंतु इसको सब जगह लगा दो, अपने ऊपर भी घटित कर लो, ये ठीक नहीं। हर जगह अपने ऊपर घटित नहीं हो सकता। समाधि मरण के काल में आत्मा स्वतंत्र है क्या? नहीं स्वतंत्र है, फिर समाधि बिगड़ क्यों गई? किस कारण से बिगड़ी? कर्मोदय के कारण से, शरीर के कारण से। शरीर ने साथ नहीं दिया, शुभ कर्मों ने साथ नहीं दिया, अशुभ कर्म का उदय आया और उसके माध्यम से हमारा समाधि मरण फेल हो गया। साधुओं की वैयावृत्ति किस प्रकार करनी चाहिए, ये बात चल रही है। वैयावृत्ति करण भावना आज की है। श्री कृष्ण वैयावृत्ति कर रहे थे, विशुद्धि बढ़ गई, परम सीमा पर बढ़ गई, और उस विशुद्धि के द्वारा वे समोशरण में चले गए और इतने खुशी से चले गए थे, इतने खुशी से कि हमारे महाराज का रोग दूर हो गया, महाराज मुक्त हो गए व्याधि से, इतने खुश हो गए। उस खुशी में भगवान के प्रवचन को सुनते सुनते वैयावृत्तिकरण भावना को निमित्त बना करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ कर दिया। अपने को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये वैयावृत्ति केवल औषधि देते समय ही, देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध औषधि देते समय ही बंधता है, ऐसा नियम नहीं। आहार देते समय में भी विशुद्धि बढ़ सकती है, और उस विशुद्धि को बढ़ा करके उस दिन यदि केवली या तीर्थंकर केवली इनके पाद मूल को प्राप्त होकर उनके समोशरण में अपने परिणामों की विशुद्धि को सुरक्षित रखोगे, वहां पर उत्कर्ष करोगे, तो निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। आप जिस दिन आहार करा के चले जाते हैं समोशरण में, और उस दिन बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत विशुद्धि होती है, ऐसी विशुद्धि कि आप पागल ही बन गए हैं उस दिन, आहार देकर के पागल बन गए, सबको भूल गए हैं, कितना अच्छा आहार हो गया आज, कितना अच्छा आहार हो गया आज, मैं जो अहो मेरे कुटिया में मुनि महाराज आ गए, और गाते भी रहे हम आहार के बाद, इस कुटिया में मुनि महाराज आ गए और मेरी कुटिया धन्य हो गई। भावना भाते भाते अपने परिणामों को उत्कर्ष पर चढ़ाते हैं आप, वह परिणाम भी उत्कृष्ट कर्म निर्जरा का कारण बनता है। आहार दान एक अकेला है जो श्रावक को बहुत बड़ा धर्म कहलाता है, बहुत बड़ा धर्म, मुख्य धर्म, उस मुख्य धर्म के कारण से तीर्थ की रक्षा होती है, तीर्थ की सेवा होती है। पुण्य बंद होता है, पाप कर्म की निर्जरा भी होती है, पर सम्यक दृष्टि होना चाहिए तब ये संभव है। सम्यक दृष्टि 41 कर्मों का संवर तो वैसे ही कर चुका है, और पाप कर्मों का जिनका 41 का संवर हो गया है उनकी निर्जरा भी होगी, और निर्जरा के लिए विशुद्धि चाहिए। यहाँ पर चौथे गुणस्थान में प्रति समय असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा भले ही न हो, लेकिन विशुद्धि के द्वारा सामान्य निर्जरा तो होती ही रहती है। गुणित रूप निर्जरा को तो हम संयम के माध्यम से करते हैं, देश संयम, सकल संयम, इनके माध्यम से हम असंख्यात गुणित निर्जरा करते हुए चले जाते हैं। गुणित का मतलब गुणित रूप से, गुणित रूप से, डबल नहीं, वो प्लस हो गया गुणित। इस समय में दो कर्मों की निर्जरा हुई है तो अगले समय में चार, उसके अगले समय में चार चौक 16, इस प्रकार से गुणित रूप से निर्जरा होती चली जाती है, जिसको गुणित निर्जरा कहते हैं। चौथे गुणस्थान में गुणित निर्जरा नहीं है, चाहे आहार दे दें, चाहे औषधि दे दें, कुछ भी दे दें, गुणित रूप निर्जरा नहीं है, लेकिन विशुद्धि है क्या? नहीं, विशुद्धि तो है। उस विशुद्धि के माध्यम से कभी थोड़ी निर्जरा हो गई, कभी अधिक निर्जरा हो गई, फिर उससे कभी कम निर्जरा हो गई, उससे कभी अधिक निर्जरा हो गई, इस प्रकार से अप डाउन निर्जरा तो यहाँ है। कितने कर्मों की निर्जरा? जिनका हमने संवर किया है उतने कर्मों की निर्जरा तो होती ही रहती है। कितने कर्मों का संवर होता है चौथे गुणस्थान में? 41 कर्मों का संवर होता है, 41। ये सम्यक दर्शन का परिणाम है, संवर कराना। ये सम्यक तो ने कार्य किया, संवर कराने का कार्य किससे हुआ? सम्यक दर्शन से हुआ। कितने का संवर करा दिया उसने? 41 कर्मों का संवर। अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद आपको इन 41 कर्मों का तब तक बंद नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन सुरक्षित है। एक भी कर्म का बंद नहीं होगा 41 में से। इतने पाप कर्मों का आना रुक गया है। संवर का मतलब क्या? आना रुक गया है, संवर हो गया। अब निर्जरा कौन कराएगा? बोलो तो, क्या पूछ रहे हैं? निर्जरा कौन कराएगा? सम्यक दर्शन नहीं, अलग काम चाहिए। अब अलग कार्य चाहिए। नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक क्या दान नहीं देता है क्या? देता है। पंचम गुणस्थान वाले दान नहीं देते हैं क्या? देते हैं। तो दान देते समय विशुद्धि नहीं बढ़ेगी क्या? दान के काल में रहने वाली जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि के कारण चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक की निर्जरा अप डाउन के माध्यम से होती रहती है। गुणित निर्जरा नहीं, गुणित निर्जरा तो सैमी की होती, यहां अप डाउन होकर के निर्जरा होती रहेगी। और इसलिए कहा जाता है श्रावक जब वह अपने षट कर्म में से दान करने की क्रिया में प्रवृत्त रहता है, दान करने की क्रिया में प्रवृत्त रहता है, उस समय विशुद्धि अधिक होने से वह ज्यादा कमाता है धर्म को। पुण्य को, धर्म को और पाप कर्म की निर्जरा को अधिक कर देता। सबसे अच्छा व्यापार किस समय होता है? सबसे अच्छा व्यापार, धर्म का व्यापार, व्यवसाय किस समय करेगा श्रावक? आहार दान देते समय करता है। एक मुनि महाराज को आहार देने का मतलब होता है हम तीर्थ को जीवित कर रहे हैं, जीवित रख रहे हैं, रत्नत्रय को जीवित रख रहे हैं, धर्म को जीवित रख रहे हैं। मुनि महाराज आहार क्यों लेते हैं? पेट भरने के लिए? नहीं, हाँ, रत्नत्रय इसके बिना सुरक्षित रहना संभव नहीं है, इसलिए लेना पड़ता है। तीर्थंकर भगवान को भी आहार लेना पड़ा ही। आहार लिए बिना भी मोक्ष हो सकता है, ये बात अलग है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आहार लिए बिना भी मोक्ष कौन गए हैं? भरत चक्रवर्ती के 923 जो पुत्र थे वे आहार के लिए उठे ही नहीं, पहले सामायिक में ही उनको केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती को भी ऐसा ही हुआ, ध्यान रखना क्या बता रहे हैं? हाँ, भरत चक्रवर्ती को भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ली, ध्यान में बैठ गए और अंतर्मूर्त के भीतर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आहार लेने की जरूरत नहीं होती। मुनि अवस्था में भूख लगती है, प्यास लगती, अरहंत अवस्था में भूख प्यास नहीं, इसलिए आहार की आवश्यकता नहीं। भरत चक्रवर्ती आहार लिए बिना मोक्ष चले गए, किंतु आहार लेकर के जो मोक्ष जाते हैं उनको आहार तो आवश्यक है, तो आहार किससे लेंगे? श्रावक से लेंगे, श्रावक के घर जाना ही पड़ता है, घर जाना पड़ता है, और घर नहीं जाएंगे तो आहार नहीं होगा। घर नहीं जाएंगे तो हम यहीं रहेंगे तो श्रावक आहार लेकर के यहीं आ जाएंगे। महाराज आप उठते क्यों नहीं हैं? आप घर तक आने के भाव नहीं है क्या? हम यहीं चौका लगा लेते हैं, उठो। श्रावक के पास कितनी अनुकंपा होती है, धर्म के प्रति कितना अनुराग होता है, देखो तो सही। धर्म को और धर्मात्मा को देख करके जिसको दान के भाव नहीं आते हैं ना, वो श्रावक नहीं कहलाते। पात्र को देख करके दान के भाव नहीं जगते हैं तो वो श्रावक नहीं, और पात्र को देख करके अगर आहार के लिए उठने को भाव नहीं होते हैं तो वो मुनि नहीं, ऐसा कहें? नहीं, ऐसा कोई इधर नियम लागू नहीं हो सकता, ऐसा नियम लागू नहीं। उतने चौका लगाया है तो उठना ही पड़ेगा, ये नियम बन जाएगा तो हो गया ना फिर काम, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आहार अगर शरीर के लिए आवश्यक है तो मुनि महाराज उठते हैं, आहार अनावश्यक हो गया तो उस दिन नहीं उठते। ये मुनि महाराज की स्वतंत्रता। लेकिन मुनि महाराज उठते हैं क्या नहीं उठते, पहले से पता लगाने का प्रयत्न श्रावक कर सकता है क्या? और यदि कर लें तो वो कर्म को बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा, कर्म बांधता है वो। मुनि महाराज को देख करके शुद्ध भोजन करने का संकल्प लोगे? नहीं, मुनि महाराज तो शुद्ध ही खाते हैं, और हम यदि शुद्ध नहीं खाएंगे तो मुनि महाराज को भी दे नहीं सकते, इसलिए हम शुद्ध खाएंगे, मुनि महाराज आए या नहीं आए, मुनि महाराज को देखते ही शुद्ध भोजन करना चाहिए, पूछ करके नहीं। महाराज आप उठेंगे आज आहार के लिए? मुनि महाराज से पूछे क्यों पूछ रहे हो? पूछा नहीं जाता, पूछना दोष है। वो मुनि महाराज दिखे तो अपने को शुद्ध भोजन करना कर्तव्य होता है, पूछ करके नहीं। महाराज आज चतुर्दशी है, आप उठेंगे या नहीं उठेंगे? हाँ, एक फिर कर्म बांध लिया। महाराज को पूछा नहीं जाता, महाराज नहीं उठे उस दिन शुद्ध भोजन बना था, वो किसने खाए? श्रावक ने खाए, तो उसको पुण्य लगा कि नहीं लगा? मुनि महाराज अगर नहीं उठते तो उस दिन अशुद्ध खाने वाले थे क्या? तो अशुद्ध खाते तो क्या पुण्य लगने वाला था क्या? पाप ही तो लगने वाला था। तो मुनि महाराज को देख करके आपने शुद्ध भोजन कर लिया, शुद्ध भोजन खाया, तो पुण्य वैसे ही लग गया। मुनि महाराज उठे या ना उठे, मुनि महाराज उठते तो डबल पुण्य लगता, डबल कर्म की निर्जरा होती, डबल धर्म होता। मुनि महाराज की चर्या एक स्वतंत्र चर्या होती है, वो किसी से बंद करके कोई काम नहीं कर सकते, बंद नहीं सकते वो। और मुनि महाराज भी ये कह दे कल चतुर्दशी है चौका नहीं लगाना, तो ये और गलत है। और हमारी पारना जो है चतुर्दशी के दूसरे दिन है, ये कह दिया तो चतुर्दशी के दिन श्रावक चौका लगाएगा ही नहीं, उस दिन अशुद्ध खाएगा, और उसके दूसरे दिन शुद्ध खाएगा, और उसके दूसरे दिन मुनि महाराज भी उठेंगे, तो ये दोनों ही दोषपूर्ण है। मुनि की चर्या दोषपूर्ण और श्रावक की क्रिया दोषपूर्ण। साधु वैयावृत्ति विवेक से होती है। वे एक श्री कृष्ण समोचरण में चले गए और वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना प्रारंभ हो गया। उस समय सम्यक दर्शन कृष्ण के पास था। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना प्रारंभ नहीं होता, नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है। चाहे करोड़ों भाव तक दर्शन विशुद्धि भावना भाव मिथ्या दर्शन के साथ भाव भा रहे हैं भावना, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हो सकता। एक तो सम्यक दर्शन चाहिए ही, किंतु अन्य भी कोई साथ में, सम्यक दर्शन के साथ अन्य कोई एक भावना जोड़नी पड़ेगी। तो कृष्ण ने कौन सी भावना जोड़ी? वैयावृत्तिकरण भावना। किसकी वैयावृत्ति की? मुनि महाराज की वैयावृत्ति की। किसके द्वारा की? औषधि के द्वारा की। औषधि भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण पड़ सकता है और आहार भी कारण पड़ सकता है। उनकी वैयावृत्ति अनेक प्रकार से होती है, अनेक प्रकार से वैयावृत्ति होती है। जैसे कोल्हापुर में आए तो मंदिर किधर है दिखाना भी वैयावृत्ति है। मंदिर किधर है विनय से दिखाना भी वैयावृत्ति है। भगवान का अभिषेक, हाँ बिल्कुल, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, ये भी वैयावृत्ति में ही आता है। हाँ, भगवान की वैयावृत्ति है। वीतराग प्रतिमा को हमने अभिषेक करके विनय के साथ स्वच्छ कर लिया, वीतरागता उसमें आ गई, साफ हो गई मूर्ति। मूर्ति को कैसा रखा जाता है? श्रावक को अभिषेक करना चाहिए, अन्य के द्वारा नहीं। अभिषेक के लिए किसी व्यक्ति को रखा नहीं जाता, खुद को भी करना चाहिए। ये जैन धर्म है, ये असली जैन परंपरा है। आजकल कुछ भी हो रहा है, श्रावक नहीं कर सकता, अंदर नहीं आ सकता, नहीं ठीक नहीं है ये। ये श्रावक धर्म के निर्वाह के लिए मंदिर बने हैं या किसी एक व्यक्ति के लिए बने हैं? तो आप अंदर जाकर के अभिषेक नहीं कर सकते? आपको ही करना पड़ेगा, किसी और को रख करके अभिषेक करना ये दोषपूर्ण है। तो ऐसा ही इधर भी कर लो, श्रावक को यदि अभिषेक करने का अधिकार नहीं है तो मुनि को भी डायरेक्ट श्रावक को दान देने का भी अधिकार नहीं है, नौकरों के माध्यम से दान दिया जाएगा। नियम बना लो इधर भी, नौकरों से क्या मुनि महाराज आहार ले सकते? आपके घर में नौकर हैं तीन चार और आपका काम करते हैं घर का, तो आहार देने का भी काम करे वो? सोचो, विचारो, कहाँ सो रहे हो? जागो, जागने में जीवन है। ये किसके कर्तव्य हैं? षट कर्म, देव पूजा, ये श्रावक धर्म है या नौकर का धर्म है? ये हमने नौकरों को क्यों रखा? हम जब प्रमादी बन गए, हमने जब षट कर्म को भूल गए, षट कर्म को भूला और हम उससे दूर हटने लगे, तो भगवान और भगवान का मंदिर संकट में आया। क्या वहां पर झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं रहा, पूजन करने वाला कोई नहीं रहा, अभिषेक करने वाला कोई नहीं रहा? सभी लोग प्रमादी बन गए, सभी श्रावक प्रमादी बन गए। जब ये प्रमाद बढ़ गया था तब ये व्यवस्था श्रावक के माध्यम से भी हो गई थी, और श्रावक स्वयं अभिषेक करने लग जाए, पूजन करने लग जाए, तो फिर नौकरों की जरूरत क्या है? फिर भी आवश्यक है। मंदिर को साफ करना ये किसका काम? श्रावक का। मंदिर को साफ करना, स्वच्छ रखना, इसका अर्थ होता है समूह शरण को स्वच्छ रख रहे हैं आप। कितना बड़े भाग्यशाली। मंदिर में कचरा गिरा हुआ है देख करके अपने मन में जिस श्रावक के मन में भाव नहीं आते कि इसको साफ करना चाहिए, वो श्रावक ही नहीं, अज्ञानी है वो। सुन रहे? सुन रहे? वहां कचरा गिरा हुआ है और आप बुलाने लगे किसको? नौकर को, ये कचरा हटाओ, गलत है। अपने आंखों से अगर उसको देख रहे हैं तो तुरंत अपने को ही हटाना चाहिए। उस कचरे को हटाने के लिए जिसको भाग्य मिला वो पहला भाग्यवान, जिसके दृष्टि में पहला कचरा आ गया वही भाग्यवान, और जो साफ होने के बाद में आ रहा है उनका भाग्य नहीं है। कचरा उठाते समय उसने पुण्य बंद कर लिया, बाद वाले को पुण्य बंद करने का अवसर ही नहीं मिला। इसको पुण्य बंद भी हुआ, कर्म की निर्जरा भी हुई। आहार देते समय जो पुण्य बंद होता है, कर्म की निर्जरा होती है, वही मंदिर को साफ करते समय भी आपको होगा, क्योंकि भगवान की वही आवृत्ति है। मंदिर साफ रखना भगवान की वही आवृत्ति है। मंदिर को बांधना, मंदिर को बांध करके भगवान को विराजमान करना, ये किसकी वही आवृत्ति? मंदिर बांधना भगवान की वही आवृत्ति, भगवान के तीर्थ की वही आवृत्ति, कोल्हापुर में आज हम देख रहे हैं साधु आते हैं तो साधुओं को ठहरने के लिए जगह नहीं, इतनी बड़ी समाज करोड़पति लोग यहाँ बैठे हैं, साधु को रोकने का कोई स्थान नहीं है? कहाँ सोए हुए हैं करोड़पतियों, काफी गहरी नींद। उसको छोड़ो, अज्ञानी हैं, अज्ञान में हैं, वर्तमान का सोचो, अज्ञानियों के पीछे मत लगो, वर्तमान को सोचो, वर्तमान में रास्ता निकालो। साधुओं को रहने के लिए मुनि निवास बनाना, ये कौन सा दान है? चार प्रकार के दान में से आवास दान, कोल्हापुर में तो आवास दान जीरो ही है। कैसा लग रहा है आपको? दुख होना चाहिए कि नहीं? और ये जिला प्लेस, जिला प्लेस में तो जिलाधिकारी रहते हैं श्रावक सभी, और जिलाधिकारियों की परिस्थिति ये है, इससे अच्छे तो छोटे गांव हैं। एक से बढ़कर के एक रहने के लिए मुनियों के कमरे मिलते, साधु निवास हैं, पांच छह मंदिर एक एक गांव में, छोटे गांवों में भी यहां देखा जाता है, बहुत जैन समाज है छोटे गांवों में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में और सांगली डिस्ट्रिक्ट में और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, जितने गांव हैं जैन समाज के उतने कहीं नहीं है। उधर कर्नाटक में आगे बढ़ते हैं तो उधर नहीं, और इधर पश्चिम महाराष्ट्र में बीच में तो समाज नहीं है, कुंतलगिरी तक समाज नहीं है। आप सभी लोग दशलक्षण पूजन कर रहे हैं, सब लोगों की भावनाओं में एक उत्कर्षता आनी चाहिए, वैयावृत्तिकरण भावना के संबंध में, किसकी वैयावृत्ति कैसे करे। उदासीन होकर के रहने से काम नहीं चलने वाला, संकल्प लेना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी मुनि निवास के लिए। पहला कार्य मुनि निवास होगा ना, है ठीक है। अगला चातुर्मास अपने मुनि निवास में होगा, अपने कितनी बारीकी से कथन किया है, अपने मुनि निवास में होगा। अपने यानी एक या अनेक, ये मुनि निवास कैसे बनेगा? एक के द्वारा बनेगा क्या अनेकों के द्वारा? अनेकों के द्वारा भी बने, एक के द्वारा भी बने, एक भी दें अनेक भी दें। नहीं हो सकता? इस समय में विशुद्धि रहती है, विशुद्धि के समय में जो दान होता है वो उत्कृष्ट क्वालिटी वाला पुण्य बनता है, उत्कृष्ट क्वालिटी से ही निर्जरा होती है। जो हमारे निदत्त निकांचित कर्म जो होते हैं ना, उनकी भी आप निर्जरा करना चाहते हैं, कठोर कर्म जो फल दे करके ही जाते हैं, कठोर फल को दे करके ही जाते हैं, ऐसे कठोर कर्म भी हम किए हुए कर्म होते हैं अनादिकाल से, उन कर्मों की निर्जरा भी विशुद्धि के काल में होती है। इस समय में निर्जरा करने का मौका है, सुबह सुबह बोली लगती है, विशुद्धि के काल में जो बोली लगती है ना वो अलग ही क्वालिटी, अलग ही कर्म की निर्जरा है। जब आप व्यक्तिगत सोचते हैं और घर में सोचते हैं, विशुद्धि नहीं रहती इतनी, अन्य अन्य विचार दिमाग में रहते हैं, लेकिन यहां पर भगवान के सानिध्य में बैठ करके जब आप बोली लेते हैं तो बोली चढ़ने के भाव आते। क्यों? मोह कर्म दब रहा, मोहनी कर्म दब रहा है। मोहनी कर्म दबने से बोली की इच्छा और बढ़ती है। बोली करना हो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो, लेकिन कम से कम यहाँ पंडाल में आने के बाद दान के भाव उत्कृष्ट रूप से जगना चाहिए। मैं अधिक से अधिक शक्ति के अनुसार दान करूं, ये भावना जगना चाहिए। अगले चतुर्मास तक मुनि निवास तो बनना ही चाहिए। अगले चतुर्मास तक, किसका चतुर्मास मैं नहीं बोल रहा हूं, मुनिचर्या स्वतंत्र है। मुनिचर्या तो स्वतंत्र है, योग हो तो योग को कोई टाल नहीं सकता, योग को कोई टाल नहीं सकता, योग हो तो हो ही जाएगा। परंतु योग होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ये भी एक भावना ही है। ये 17वीं भावना है, 16 भावना तो भाई रहे हैं, ये 17वीं भावना है। ये भावना को भाते रहो, अवश्य कोई न कोई सानिध्य मिलेगा ही, निश्चित रूप से सानिध्य मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भावना भवनाशिनी, भावना ही हमको भवों का, संसार का नाश कराती है, और भावना ही हमें क्या करती है, एक पाषाण को भी भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। पाषाण होता है सामने, शिल्पी अपने हाथ में छैनी और हथौड़ी को लेकर के मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। भावना होती है क्या? नहीं, भाव के अनुरूप वह मूर्ति बनती जाती है, बनती जाती है, और एक सुंदरतम मूर्ति बन जाती है। एक भावना के माध्यम से ही हमको भगवान बना करके शिल्पी दे देता है, और हम उपासना में डूब जाते हैं। शिल्पी ने ये तो बनाया, किसने बनाया होगा, उनको कितना पुण्य, जिसकी पूजा सारे लोग हम कर रहे हैं, यहाँ मुनि महाराज भी जिसकी वंदना कर रहे हैं, इसको जिसने बनाया वो तीर्थंकर के माता पिता के समान तो है ही। तीर्थंकर को किस कौन बनाते हैं, नौ माया महा तक माता पिता। ऐसे शिल्पी एक पाषाण में भगवान को बना देता है, तो भावना भगवान को बना सकती है, उसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। तो देखो हम क्या नहीं कर सकते, भावना के माध्यम से सब कुछ कर सकते। तो पहला काम आपका मुनि निवास का काम, और एक बड़ा प्रवचन हॉल, हॉल की जगह वहां पर देखो, अगले साल तक वो हो या ना हो, मुनि निवास तो हो ही जाएंगे ऐसा लगता है, हमको लग रहा है, हमको लग रहा है हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पंडाल हो या ना हो, देखो इसको लगा करके तत्काल काम हो रहा है कि नहीं, ऐसा चल जाएगा। लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर एक मुनि निवास और वहीं पर पास में पंडाल, ऐसे ही बैठ करके दशलक्षण पर्व अगले साल मनाएंगे। कितना बड़ा आनंद आएगा, कितना बड़ा आनंद आएगा, ऐसे ही प्रवचन सुनेंगे, ऐसे ही आनंद लेंगे, कितना बड़ा आनंद आएगा। तैयारी करना है, यहां पर तो समोचरण लग गया, और यही समोचरण में कन्वर्ट होता है क्या, पूछ लो। भाग्य हो तो हो जाएगा, हो जाएगा। आशीर्वाद भगवान अजितनाथ का भी मिल गया और हमारा तो मिला हुआ ही है और आचार्य श्री का तो वैसे ही यहां मिल गया तो वहां से आता ही है दोनों हाथ से। तो कोल्हापुर में अब धार्मिक आयतन बनना चाहिए जिसके माध्यम से आप धर्म की साधना कर सकते हैं, साधु भी धर्म की साधना कर सके, ऐसे स्थान को जहां पर उनकी चर्या पल सकती हो उस स्थान में जगह ढूंढना चाहिए। उनकी ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, ये जो होती हो सकती है प्रतिष्ठापना समिति, उसको ध्यान में रख करके जगह को देख लेना चाहिए। जंगल ये मुख्य, तो यहां पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको आधा घंटा नहीं लगता जंगल से निपट करके आ जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है और दो जगह जगह है यहां पर, तो इस एरिया में कहीं भी ये बन जाए एक हॉल की व्यवस्था और मुनि निवास, तो कोल्हापुर में तो ऐसा तो उधर जाएंगे तो नहीं मिलता कहीं अंदर। एक वो है जहां पर मानसतम मंदिर, उधर नदी के किनारे जंगल के लिए जगह मिलती है, लेकिन बरसात के दिनों में जब वो चढ़ जाता है, बाढ़ आती है, तो समस्या में आ जाती है। सबसे दृष्टिकोण, सब दृष्टिकोण से यहां पर बहुत अच्छा। पहला इधर का सोचो और उधर हम गर्मी में रहते हैं तो उधर भी रह सकते हैं, दोनों तरफ होना चाहिए। जैन समाज सब जगह है कोल्हापुर में, जहां जहां समाज है वहां पर मुनि निवास बनना ही चाहिए। आज मुनि निवास न होने के कारण और जंगल की व्यवस्था न होने के कारण मुनि महाराज सब जगह रह नहीं सकते, ये परिस्थिति हो रही है। कम से कम मुनि निवास तो बनना ही चाहिए सभी जगह। बहुत बड़ी सिटी है, 5-10 किलोमीटर में फैली हुई सिटी है, और जहां जहां समाज है वहां पर मुनि निवास बनना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आज साधु वयावृत्तिकरण कल हुआ था, आज साधु समाधि हो गया था, आज साधु वयावृत्तिकरण भावना भाया है, भाग गए हैं, तो इसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, यही भावना हम भाते हैं। आप सभी तीर्थंकर बने। समय हो गया है।